حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں گم ہوں. حرم کی مقدس فضاؤں میں گم ہوں میں, جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آپ کے سامنے سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ اس سیریز کا چلو مکہ کی گلیوں میں چل کر دیکھیں. میں نے کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کی, اب کے جب کھولیں تو میں نے دیکھا 10 سال کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نور چہرہ, خوبصورت آنکھیں, بڑے سلیقے سے بنے ہوئے بال اور بکریاں چرا رہے ہیں. مجھے بڑی حیرت ہوئی, یہ تو بڑا سخت کام ہے, بڑا محنت طلب ہے, بہت تھکا دینے والا ہے, اس میں تو بڑے صبر کی ضرورت ہوتی ہے. 10 سال کا بچہ بکریوں کو ہانک رہا ہے, کوئی بکری کہیں دوڑے جا رہی کوئی کہیں, مگر چھوٹا سا بچہ بڑے تحمل کے ساتھ ان کو واپس لاتا ہے. میرے منہ سے بے ساختہ نکلا, اے میرے نبی, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو, آپ بکریاں چرا رہے ہیں, اتنی ٹف جاب آپ کو کرنی پڑ رہی ہے, میں کروں آپ کے لیے یہ کام, آپ کے لیے تو کتنے جان نثار ہیں, آپ کو اتنا مشکل کام کرنا پڑ رہا ہے. ہمارے ہاں تو 10 سال کے بچے کے ناز اور نخرے ہی ختم نہیں ہوتے, ابھی تو اس کی یہ عمر ہوتی ہے کہ والدین سے ضدیں کر رہا ہوتا ہے, اور آپ کہاں تپتی دوپہر میں بکریاں چرانے نکلے. میں آپ دنیا کے بے تاج بادشاہ ہیں اور بکریاں چرا رہے ہیں, پھر کیسے آپ کی امت اپنے ہاتھ سے محنت کرنے کو کبھی حقیر سمجھ سکتی ہے؟ اگر آپ محنت کر کے کمائی کر سکتے ہیں اور اس کام کو کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھ رہے, تو آپ کی امت کے ہٹے کٹے لوگ کیسے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں, اور کسی کام کو کرنے میں کیسے شرم محسوس کر سکتے ہیں, محنت کرنے کو اپنی شان سے کم کیسے سمجھ سکتے ہیں, اور کسی بھی پیشے کو اپنے لیے آر کا باعث کیسے جان سکتے ہیں؟ جو کام میرے نبی کر رہے تھے اس میں تو بہت صبر, تحمل, سنجیدگی اور ٹھہراؤ کی ضرورت تھی, اس لیے کہ بکریاں بے قابو ہوئے جاتی تھیں. ان کو قابو کرنا, ان کو ہانک کے لے جانا اور واپس سلامتی کے ساتھ لانا کوئی معمولی کام نہیں تھا. ایک بڑا آدمی بھی اس میں تھک جاتا, اور یہ تو بچے تھے, مگر کیسے پوری ذمہ داری کے ساتھ بکریوں کو چرا کے واپس لا رہے تھے. حلیمہ کے گھر رہتے ہوئے ان کے بچوں کے ساتھ اس کام کا تجربہ ان کو کافی ہو گیا تھا. جب یہ گھر پہنچے تو تھکے ہوئے تھے, سارا دن کی مشقت تھی, مگر میں نے دیکھا لبوں پہ ذرا بھی شکایت نہیں تھی. آگے بہت ہی سادہ سا کھانا دسترخوان پہ لگا ہوا تھا, اور ابو طالب اور ان کے دوسرے بچے بیٹھے انتظار کر رہے تھے, جیسے انہی کا انتظار کر رہے ہیں. ان کو دیکھتے ہی سب کے چہرے کھل گئے. ابو طالب کہنے لگے, محمد آؤ بیٹا, تمہیں پتہ ہے कि तुम्हारे बगैर हम खाना शुरू नहीं करते। इन्नकल मुबारकुन, आप बहुत मुबारक हैं, आपके साथ खाना खाते हैं तो सबके पेट भर के उठते हैं। नन्हे मोहम्मद जमीन पे बैठ गए और सबने खाना शुरू कर दिया। कितना सादा दस्तरखान था और थोड़ा सा खाना। कोई कीमती फर्नीचर नहीं, कोई महंगी क्रॉकरी नहीं, कोई फैंसी डिशेस नहीं। दुनिया के सरदार और ऐसे जमीन पे बैठ के खाना खा रहे हैं। मैंने जब से यहाँ के हालात देखे हैं, यही जाना है कि इस इलाके के जितने बच्चे मेरी नजर से गुजरे, तकरीबन सभी मैले कुचैले, बिखरे बाल, चेहरे कुमलाए हुए, गर्द मट्टी से भरे हुए, मगर नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मैं देखती हूँ तो हमेशा साफ सुथरे, तरोताजा और शादाब। मैंने देखा अबू तालिब के बाकी बच्चे नाश्ते के वक्त छीना झपटी कर रहे हैं। उनको देखकर नन्हे मोहम्मद ने अपना हाथ खाने से खींच लिया और खामोशी से एक तरफ बैठ गए। उनके साथ छीना झपटी में शामिल नहीं हुए। अबू तालिब बैठे देख रहे थे, वो उठ के आए और कहने लगे, मोहम्मद आप इधर आ जाएं, आप अलग से नाश्ता यहां बैठ के किया करें। ये अपनी उम्र में तो कम थे मगर समझदारी में एक बड़े आदमी की तरह। बहुत कम ही बच्चे ऐसे होंगे जो इतने समझदार इस उम्र में, इतने मेहनती और इतने जिम्मेदार हों। शायद यही वजह थी कि अबू तालिब इनसे बेहद मोहब्बत कर रहे थे। जब इनकी तरफ देख रहे थे, मोहब्बत की नजर से देख रहे थे, अपनी औलाद को भी पीछे करके इनको आगे किया हुआ था। मैं अभी इस खानदान को देख रही थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। अबू तालिब उठ के गए, बाहर कुछ लोग खड़े थे। एक बोला, अबू तालिब वादी कहत का शिकार है, बाल बच्चे भूख की जद में है, चलें बारिश की दुआ के लिए निकले हमारे साथ। अबू तालिब ने नन्हे मोहम्मद का हाथ पकड़ लिया और साथ लेकर चिलचिलाती धूप में निकल खड़े हुए। वो लोग भी साथ साथ थे। ये छोटा सा काफला चलते चलते काबा तक पहुंच गया। मैंने देखा अबू तालिब ने नन्हे मोहम्मद की कमर काबा से लगा दी और बच्चे ने अपने छोटे छोटे खूबसूरत हाथों को हवा में बुलंद किया और दुआ करनी शुरू कर दी। मैंने सोचा आसमान पे तो एक भी बादल नहीं, दूर दूर तक कहीं बारिश का कोई असर नहीं। बारिश कहाँ से होगी, यहां तो ऐसे कोई असबाब नहीं, कोई आसार नहीं। मगर अभी मैं ये सोच ही रही थी कि यकायक आसमान के किनारे से बादल उमड़ने लगे और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। हर तरफ जल थल हो गया। अबू तालिब ने ये देखा तो बहुत ही खुश हो रहे और खुश हो के अशार कहे। वो सुफेद रंगत वाला जिसके चेहरे के जरिए से बारिश तलब की जाती है, वो यतीमों का सहारा और बेवाओं की आबरू का मुहाफिज। अभी से मेरे नबी के लिए कैसे खैर के जज्बात थे लोगों के दिल में। मक्का के हालात कुछ अलग ही थे, ये उनसे बहुत फर्क थे जैसा मक्का मैं 21वीं सदी में छोड़ के आई थी। मैं देख रही थी यहाँ पे लोग नंगे घूम रहे हैं, कोई सरे आम रफाए हाजत के लिए कहीं भी बैठ जाता है सबके सामने। एक जगह से गुजरी तो शर्म से मैंने मुंह छुपा लिया कि दो लोग रास्ते में ही कजाए हाजत के लिए बैठे। और फोहश बातें कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती? इसका मतलब है कि इस माशरे में तहजीब नाम की कोई चीज नहीं, बच्चे भी नंगे घूम रहे हैं, हत्ता के बाज लोग तो खुली जगह पे नंगे नहाते भी नजर आए। हाँ, एक बच्चा मोहम्मद, वो ऐसा नहीं, इनको मैंने देखा कि कभी बेलिबास नहीं हुए। कहाँ ये माशरा और कहाँ मेरे नबी का किरदार और अखलाक? रहते तो वो भी उसी माशरे में थे, लेकिन मैंने जो ये बात नोट की कि उनके अंदर उस माशरे की कोई ऐसी खराबी नहीं थी जो वहां आम थी। मैं चलती जा रही थी, कुछ घरों पर बड़े ऊंचे रंग बिरंगे झंडे लगे हुए थे। क्या ये कोई पार्लियामेंट हाउस है, या कोई वजीर का घर, कोई मुशीर का घर है? मैंने गाइड की तरफ सवालिया नजर से देखा। वो बोला, ये जानिया औरतों के घर हैं जिन्होंने अपनी निशानी के लिए ऐसे झंडे लगा रखे। इतने में दो मर्द मेरे सामने से गुजरे, एक दूसरे से कह रहा था, कल रात मैंने उस फलानी के हाँ रात गुजारी। वो लाल झंडे वाली, दूसरा खिलखिला के हंसा और बोला, फिर कैसी रही? मैं तेजी से उनको पार करके आगे निकल गई। ये कैसे लोग हैं, इनके अंदर जरा भी हया नहीं। फिर मुझे ख्याल आया, हमारे यहाँ भी तो बाजारे हुसन होते हैं, यही काम खूबसूरत नामों के साथ। हमारे यहाँ मुसलमान माशरों में आज तक चल रहे हैं, फिर इनको मैं क्या कहूं, ये तो है ही जाहिली माशरा। मैं कुछ देर के लिए हरम के करीब बैठ गई और वहां आते जाते वालों को देखने लगी। आज भी इस घर की रौनकें वैसे ही थी, लोग लब्बैक पुकारते हुए आ रहे थे, फिर कोई आके अपने बुत के सामने सर झुकाता, कोई इसके ऊपर चढ़ावे चढ़ाता, कोई यहाँ पे दुआएं करता, कोई तवाफ शुरू कर देता। काबा की आलीशान इमारत तो न थी, मगर हाँ अभी भी इसमें कशिश महसूस हो रही थी। मुताफ छोटा सही, मगर कितने ही लोग उस वक्त भी तवाफ कर रहे थे। इर्द गिर्द करीब करीब कई मकानात बने हुए थे, शायद इनके लिए मुताफ का इतना हिस्सा ही काफी था। इनकी आबादी इतनी ज्यादा थी ही नहीं, कौन सा यहाँ लाखों लोग एक ही वक्त में उमड़ आएंगे। करीबी लोग चीजें भी बेच रहे थे, कई औरतें जो अपने हाल हुलिये से बेगमात मालूम होती थी, अपनी कनीजों समेत बड़ी राउनत के साथ गुजर रही थी। जब कोई बड़ा सरदार गुजरता तो उसके भी रंग ढंग निराले ही होते। मुझे लगता है इन लोगों में तकब्बुर बहुत है, इनके चेहरों से पता चलता है कि ये खुद को बहुत बड़ी चीज समझते हैं। मैं दिल ही दिल में मुस्कुराई और सोचने लगी, हर दौर के लोग कितने नादान होते हैं, खुद को कितना बड़ा समझते हैं। वो ये नहीं जानते कि आने वाले दौर के लोग जब पीछे मुड़ के इनको देखेंगे तो इनको जाहिल, आउटडेटेड और पुराने जमाने के बैकवर्ड लोग समझेंगे। ना जाने इनको तकब्बुर किस बात का था, ना कोई ऊंची इमारतें थी यहाँ, ना कोई बड़ी बड़ी गाड़ियां, ना जहाज, ना कोई टेक्नोलॉजी, ना कोई आलीशान हुकूमत जैसे हमारे यहाँ 21वीं सदी में है। फिर क्या था इनके पास? शायद इनका हसब नसब था जिसने इनको गुरूर में मुब्तिला किया हुआ था, या शायद काबा इनके यहाँ होना और इसकी तवल्लियत। अचानक से मेरे सामने एक मिसकीन सी औरत आ गई। उसने एक बड़ी बेगम साहिबा को आते देख के उसकी तरफ दौड़ लगा दी और बड़ी लजाजत से कहने लगी, बेगम साहिबा, बड़ी दूर से आई हूं, क्या मुझे कपड़े मिल सकते हैं? मुझे तवाफ करना है। उस बड़ी बेगम ने बड़े गुरूर से इसको ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपने पीछे खड़ी कनीज से कहने लगी, इसको मेरा एक पुराना जोड़ा दे देना। ये कह के वो आगे बढ़ गई और वो गरीब सी औरत बेगम की मदद में जमीन आसमान के कलाबे मिलाने लगी। अब समझ आई, ये लोग जो बाहर से आते हैं, ये अपने कपड़ों में तवाफ नहीं कर सकते, ये कुरैश से उनके कपड़े मांगते हैं, क्योंकि ये अपने कपड़ों को समझते हैं कि वो गुनाहों की नजासत में लत पत हैं और कुरैश पाक साफ है, लिहाजा या तो ये उनसे मांग के कपड़े लेके उसमें तवाफ करें या नंगे करें। हरम की शिमाल में एक आलीशान इमारत से गाजों बाजों की आवाज आ रही थी। कुछ लोग जरक बरक कपड़े पहने हुए निकले, यूं लगता था जैसे कोई शादी है। मैंने गाइड से पूछा, ये क्या है? वो बोला, ये दारुल नदवा है, इनका पार्लियामेंट हाउस, यहाँ लोग अपनी लड़कियों की शादियां भी करते हैं। मैंने सोचा, ये और हम तो एक जैसे ही हुए, हम खुद को 21वीं सदी के लोग समझते हैं, मगर हम भी तो इसी तरह गुल गपाड़ा, शोर हंगामा, नाच गाना, इसी तरह आसमान सर पे उठाना, यही सब कुछ करते हैं अपनी शादियों पे, जैसे कि हमने पता नहीं कितना बड़ा तीर मार लिया हो। उनके सामने भी कुछ लौंडियां नाचती गाती जा रही थी और बाकी लोग पीछे पीछे पैदल चल रहे थे। हरम की गहमा गहमी अपने उरूज पे थी। यूं लगता है कि इसमें कभी किसी जमाने में भी कोई कमी नहीं आई। हाँ, मगर यहाँ बड़ी बड़ी सड़कें, एसी, पंखे, आलीशान कालीन, बड़े बड़े फानूस, मेहराबों वाले दरवाजे, खूबसूरत नक्शों निगार वाली छतें, ऐसा कुछ भी नहीं था। बस धूल मट्टी उड़ रही थी और उसी में लोग तवाफ कर रहे थे। हाँ, मगर बुतों की वजह से एक अजीब नागवारी महसूस हो रही थी। एक तरफ एक तमाशा दिखाने वाला कुछ करतब दिखा रहा था और बच्चे उसके गिर्द जमा थे। मैंने सोचा, इन बच्चों ने स्कूल नहीं जाना, कुछ पढ़ना लिखना नहीं है, क्या इनके पास कोई भी काम काज नहीं? सुबह के वक्त ये इस तरह से आवारा घूम रहे हैं। मैं उठी और एक तरफ को चल दी। छोटी सी बस्ती है, मगर रौनक कितनी है यहाँ। एक जगह देखा तो एक शायर बैठा अपनी शायरी सुना रहा है और लोग आशा कर रहे हैं, वो खूब दाद समेट रहा है। एक सरदार नुमा शख्स उसके आगे एक खनकती हुई थैली बार बार फेंक देता, लगता है ये शायर उसकी तारीफ में जमीन आसमान के कलाबे मिला रहा है, इसीलिए खुशी में उसको नवाज रहा है। शायद इन लोगों की यही एंटरटेनमेंट थी, जाहिर है ना टीवी ना फोन, और ये कहाँ जी बहलाएं, यही इनका फन था। इनको क्या पता आगे आगे क्या क्या चीजें आने वाली हैं, ये काम तो बचगाना से काम होंगे। मैं चलते चलते एक तंग सी गली में दाखिल हो गई और जब एक मकान के पास से गुजरी तो अंदर से शोर की आवाजें आ रही थी, किसी औरत के रोने और दुहाइयां देने की आवाजें थी। मैं जल्दी से आगे बढ़ी तो एक उधेड़ उम्र औरत एक हट्टे कट्टे आदमी से कह रही थी, बेटी हुई है। वो गुस्से से चिल्लाया, मुझे क्या कह रही है, उसी गड़े में जाके दबा दे जो चारपाई के नीचे खोदा हुआ है। उधेड़ उम्र औरत शायद को दाया थी, बोली, अब ये 7वीं दफा भी? वो बोला, 7वीं क्या, 100वीं दफा भी मुझे ये करना पड़े तो यही करूंगा। गुस्से से गुर्रा रहा था, जा जैसा कहा है वैसा कर, मुझसे ज्यादा बहसे करने की जरूरत नहीं। आदमी का चेहरा गुस्से से लाल था, यूं लगता था गुस्सा और गम मिल गए। दाया मायूस होकर वापिस अंदर चली गई। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मुझे अंदर से एक छोटी सी रोने की आवाज आने लगी और साथ ही एक औरत चीख रही थी, नहीं, अल्लाह का वास्ता, ऐसा ना करो, इसको बख्श दो, देखो ये कितनी प्यारी है, इसको मेरी खातिर छोड़ दो। मगर ऐसा लगता था कोई सुनने वाला नहीं। कुछ देर तो बच्ची के रोने की बिलखने की बहुत आवाज आई, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता वो आवाज कमजोर होने लगी और फिर बिल्कुल खामोश हो गई। या अल्लाह, एक औरत की इतनी तसहीक, एक लड़की को क्या इस माशरे में जीने का हक नहीं? इसका क्या कसूर सिवाय इसके कि ये एक लड़की है? ये कैसा संगदिल माशरा है और ये कैसा बाप है? मुझे उस शख्स पे भी इस कदर गुस्सा आया। जब आवाजें आना बंद हो गई, यूं लगा इस शख्स के सर से बोझ उतर गया। उसने एक लंबी सांस खींची और बड़ी बेपरवाही के साथ हरम की तरफ का रुख किया, और मुझे तो जैसे सकता हो गया था। मैं अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो गया, इतने पत्थर दिल हो गया। मैं बोझल कदमों से आगे बढ़ी। एक जगह पर कुछ छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के साथ बैठे रो रहे थे। पास से गुजरने वाली औरत उनको रोते देख के रुकी और बोली, क्या बात है, आज भी मारा पीटा है तुम्हारे चचाओं ने? औरत तो मुंह छुपाए रोती रही, मगर बच्चों में से जो बड़ा था वो बोला, आज तो इससे भी बढ़ के हो गया, चचाओं की मार तो रोज ही खाते थे, मगर आज तो हमारे सुतेले भाई ने हमारी माँ से शादी कर ली, और वह कहता है मैं विरासत में से जरा भी माल कहीं बाहर नहीं जाने दूंगा। हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मुझे यकीन नहीं आया कि मैं क्या सुन रही हूं। ये क्या कह रहा है, सुतेले भाई ने हमारी माँ से शादी कर ली? क्या मैंने सही सुना है? बच्चा एक ही सांस में बोले जा रहा था, बाबा के जाने के बाद हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं, चचा ने तो जुल्म ढाई थे मगर भाई ने भी कोई कमी नहीं की, बस सब विरासत हथियाना के चक्कर में। 5 दिन से हमें घर में बंद किया हुआ था, ना हमने कुछ खाया ना पिया। सवाल पूछने वाली औरत खड़ी सुन रही थी और मुझे हैरत थी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। वो बड़े आराम से बोली, हाँ ऐसा तो फिर होना ही था, तुम्हारे सर पे बाप जो नहीं। क्या बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला, यानी इसका मतलब इस माशरे में ये आम है कि यतीमों के साथ, बेवाओं के साथ ऐसा सलूक किया जाता है? उनको कोई पूछने वाला नहीं होता, जिसकी लाठी उसकी भैंस। फिर एकदम मेरे दिल में ख्याल आया, इसमें इतनी हैरत की क्या बात है, 21वीं सदी में भी तो ऐसा ही होता है। हाँ ये जरूर है कि कोई सुतेला बेटा अपनी माँ से शादी नहीं कर लेता, वरना बाकी जुल्म तो वही है, बेवाओं का कोई पुरसाने हाल नहीं, यतीमों को कोई पूछने वाला नहीं। क्या अपने खानदान में गोगी चाची की भूल गई? जब फैज चाचा फौत हुए और छोटे छोटे बच्चे पीछे छोड़ गए, तो चाची और बच्चे बाकी चचाओं के रहमो करम पर जिंदगी गुजारने लगे। जब से फैज चाचा की वफात हुई, सारी जायदाद उन्हीं के कब्जे में चली गई। असल वारिस तो फकीरों की तरह चाचाओं के हाथों की तरफ देखते थे कि कब वो भीख समझ के उनकी झोली में थोड़े से पैसे डाल दें तो इनके घर का राशन भी आ जाए। करोड़ों की जायदाद होने के बावजूद वो कितनी कसम पुरसी की हालत में जिंदगी गुजारते रहे, और उनका भी तो कोई पूछने वाला नहीं था। मैं सोच रही थी मेरे नबी इस माशरे को कैसे ठीक करेंगे। उन्होंने कैसी जगह पे आंख खोली है, ये तो हर तरफ बिगाड़ है, इनकी तो कोई कल भी सीधी नहीं, वो कैसे यहां काम करेंगे। ऐसी सोच में चलते चलते वापस हरम तक पहुंच गई। आज यहां तक काफी है, इंशाल्लाह कल आपके साथ अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। और आज आपने जाना होगा कि किन हालात में उस वक़्त वो माशरा था जिसमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।